प्रतिक्रिया अनुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। त्रिभुवनतिलकं देवं वंदित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं, वक्षे अनुप्रेक्षाः भविकजनानन्दजननी। यह कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो कार्तिकेय स्वामी ने लिखी है, ऐसी जो अनुप्रेक्षात्मक जो शास्त्र है, उस शास्त्र के हम 50 नंबर के पृष्ठ तक आए हैं। कल बात ये हो रही थी कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसकी ही भावना सांची होती है, और अन्य जीवों की भावना होती है लेकिन वो यथार्थ नहीं होती। इस ये बात को देखते हुए हम पृष्ठ क्रमांक 50 पर आए हैं। यहाँ चौथे लाइन तक हम आए थे कि जेने उत्साह चेर तेने धर्मनी प्रीति छे, अनि तेथी तेवा जीव ने पंडित पुरुषो प्रशंसे छे। यानी जो धर्मी जीव होते हैं उनको पर पदार्थों के प्रति, यहाँ विशेष रूप से लक्ष्मी के प्रति, विशेष कोई लगाव उत्साह नहीं रहता है, इसलिए वो प्रशंसने योग्य है, ऐसी बात हुई थी। मूढ़ जीवों ने तो विवेक नहीं, तेथी कोई लग्न वगैरह में वेश्या नचाओ में हजारों रुपया खर्ची नाखे, तेवा जीवना पन वखान करे छे। यानी जो ऐसा कार्य करते हैं उनकी वखान मूर्ख लोग करते हैं, ऐसा बताना चाहते हैं। पन पंडित पुरुषो तेवा ने वखानता नथी, जेने आत्माना स्वभाव प्रत्ये बेहद बहुमान प्रकट्यु छे, અને બહારમાં નિમિત્ત તરીકે સર્વજ્ઞ દેવનું જિન મંદિર, પાત્રદાન વગેરેમાં લક્ષ્મી ખર્ચવાનો ઉત્સાહ આવે છે, તેને સંસારના અનુરાગ કરતા ધર્મના નિમિત્તો પ્રત્યેની સાધર્મી જીવો પ્રત્યેનો અનુરાગ વધી જાય છે। અજ્ઞાની તો કહે છે અરે આરંભ થાય એમ માનીને જિન મંદિર વગેરેના કાર્યમાં નિષેધ કરે છે, તેને ધર્મનું કે ધર્મના નિમિત્તનું ભાન નથી। ત્રિલોકના તીર્થંકર, દેખો યહાં બહુત અચ્છી બાત બતા રહે હૈ, જબ કોઈ કહેગા કે તું જિન મંદિર બાંધ રહા હૈ તો જિનકો ઉસમે રુચિ નહીં હૈ વૈસે લોગ કહેતે હૈ ક્યા તુમ યે પાપ કર રહે હો, જિન મંદિર બાંધને મેં ઇતને જીવો કી હિંસા હોતી હૈ, યે હોતા હૈ, વો હોતા હૈ, એહસાન મત કરો, इस टाइप का एडवाइस करते हैं। तो उनके लिए कह रहे, देखो देखो अज्ञानी कहे छे कि अरे आरंभ था वहां ऐसा काम करने में तुम हिंसा कर रहे हो, आरंभ कर रहे हो, एम मानी ने जिन मंदिर वगैरह ना कार्य नो निषेध करे छे, ऐसे जीवों को धर्मनु के धर्मना निमित्तनु भान नथी। ત્રિલોકના તીર્થંકરના વિરે સમ્યક દૃષ્ટિને ભગવાનની પ્રતિમાની પૂજા ભક્તિનો ભાવ ઉલસ્યા વિના રહેતો નથી। જેમ પરદેશ ગયેલા પતિનો ફોટો જોવાનું મન થાય છે તેમ ધર્માત્માને સર્વજ્ઞદેવ પ્રત્યેનું બહુમાન આવે છે, તેથી તેમના પ્રતિમાજી વગેરે દેખતા ભક્તિ આવ્યા વિના રહેતી નથી। તે દેવગુરુની પ્રભાવનામાં વગેરેમાં પોતાનો ભાવ ઉલસ્યા વગર વિના રહેતો નથી। 10 લાખની મૂડીવાળાને દીકરો પરણતો હોય તો તો ત્યાં લક્ષ્મી વાપરવાનો ઉત્સાહ કેમ આવે છે? તેમ પાત્ર જીવોને જિન મંદિર પ્રતિષ્ઠા પૂજા યાત્રા પાત્રદાન વગેરે ધર્મ કાર્યમાં લક્ષ્મી વાપરવાનો ભાવ આવે છે. જે લક્ષ્મી જિનેન્દ્રદેવની પૂજા પ્રતિષ્ઠા વગેરે ધર્મ કાર્યમાં વપરાય છે તે જ સફળ છે. અબ ગાતા 20 કો દેખતે હૈ.
એવમ જો જાણિતા વિહલિય લોયાણ ધમ્મ જુત્તાણમ નિરવેખો તમ દે દિહુ તસ્સહવે જીવિયમ સહલમ. એવમ યહ જ્ઞાત્વા વિફલિત લોકેભ્ય ધર્મયુક્તેભ્ય નિરપેક્ષતાં દદાતિ ખલુ તસ્ય ભવેત જીવિતમ સફલમ. ક્યા કહેતે? જે પુરુષ ઉપર કયા પ્રમાણે જાણીને લક્ષ્મી કહાં રહેતી હૈ, કૈસે રહેતી હૈ, કિતની ક્ષણભંગુર હૈ ઓર કહાં ખર્ચના ચાહીએ આદિ સબ બાતે જાણકર ધર્માત્મા જે નિર્ધન જન છે તેમને, અન્ય જો સાધર્મી હૈ, અન્ય જો ધર્માત્મા હૈ, અન્ય જો રૂચિવાન જીવ હૈ ઇસ ધર્મ કે પ્રતિ, પરંતુ જો નિર્ધન હૈ, ઉનકે કોઈ આમદની કા નહીં હૈ સાધન, તો કહેતે એસે જીવો કે પ્રતિ તેમને પ્રતિ ઉપકારની વાંછા રહિત થઈને, પ્રતિ ઉપકારને ઉનસે કુછ રિટર્ન મેં કુછ નહીં ચાહતે હૈ, ઉસકો કહેતે પ્રતિ ઉપકાર. પ્રત્યુપકાર એને પૈસા દેંગે ક્યો? ક્યોંકિ હમ કુછ ચાહતે ઉનકે તરફ સે, ઇસલિયે નહીં દેના હૈ કે અન્ય કોઈ નિર્ધન સાધર્મી હૈ, ધર્માત્મા હૈ, તો ઉનકો કિસી રિટર્ન કી અપેક્ષા વિના. તો પ્રતિ ઉપકારની વાંછા રહી થઈને તે લક્ષ્મીને આપે છે તેનું જીવન સફળ છે. ભાવાર્થ: પોતાનું પ્રયોજન સાધવા અર્થે તો દાન આપવા વાળા જગતમાં ઘણા છે. ક્યો દાન દે રહે? અપના ઉસમે કુછ હેતુ હૈ ઇસલિયે દાન દે રહે હૈ. યે લોગ ભલા કહે યા કોઈ અન્ય ભી હેતુ હો સકતા હૈ ને કે હમ દાન દે રહે ઉનકે, તો પ્રશંસા હોગી યા અપના કોઈ મેટ્રિમોનિયલ કોઈ ઉસમે હોગા યા અન્ય કોઈ જો કુછ હોગા તો દાન દેતે હૈ. પરંતુ જે પ્રતિ ઉપકારની વાંછા રહિતપણે, અભી આજકલ મેં તો એ તો કોઈ વોટ ચાહીએ, અન્ય ચાહીએ, જો કુછ વાતે હોતી હૈ ના એસે, તો એસી કોઈ વાંછા રહિત હોકર ધર્માત્મા તથા દુઃખી દરિદ્ર પુરુષોને ધન આપે છે તેવા વિરલા છે અને તેમનું જ જીવિતવ્ય સફળ છે. એને કોઈ પરોપકાર તો એ કર રહે ઓર પ્રત્યુપકાર એને ઉનકો ધન દિયા ઓર ઉન્હોને ભી હમારે કુછ કામ કરના ચાહીએ એસી કોઈ અપેક્ષા બિના ઉનકો મદદ કરતે હૈ. એ જો સ્થિતિકરણ નામ કા અંગ બતાયા હૈ સમ્યક દ્રષ્ટિ કે હોતા હૈ. દેખો પ્રભાવના કે પહેલે સ્થિતિકરણ કહા તો યહાં ભી હૈ ના, અન્ય જો ધર્માત્મા હૈ, ધર્મી પુરુષ હૈ ઓર નિર્ધન હૈ, તો ઉનકે ઇસ તરહ સે પૈસે દેકર ભી મદદ કર દેતે હૈ. અર્થ પડેંગે આપ?
જેને શુદ્ધ ચૈતન્યનો પ્રેમ કર્યો છે ને લક્ષ્મીનો પ્રેમ છોડ્યો છે એવા ધર્મી જીવને અન્ય નિર્ધન સાધર્મી વગેરેને જોતા તેના ઉપર વાત્સલ્ય ભાવ આવ્યા વિના રહેતો નથી. એ ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ? કોઈ સાધર્મી નિર્ધન હોય તેને દેખીને તેના પાસેથી બદલાની આશા વગર, એને પ્રતિ ઉપકાર કે બિના જે પોતાની લક્ષ્મી આપે છે તેનું જીવન સફળ છે. ક્યા કહે રહે હૈ? યાને હમ દૂસરે કો મદદ કરતે હૈ ઓર મદદ કે સાથ સાથ યહ ભી અપેક્ષા રખતે હૈ કે આજ નહીં કલ જબ પ્રસંગ આયેગા તો ઉસને ભી મુઝે કિસી ભી પ્રકાર સે મદદ કરની ચાહીએ. અરે યે તો અન્ય જીવો કી તો છોડો, લેકિન મનુષ્ય કે હર માતા પિતા કી એસી હી અપેક્ષા હોતી હૈ कि बालक बड़ा हो जाए तो बुढ़ापे में हमारी लाठी बन के रहे, यानी सहारा देवे। तो अभी तो उसके लिए चाहे जो तकलीफ सहेंगे उसको मदद करेंगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तो ये बात बिल्कुल रहती है कि आगे जाके ये हमको कठिन प्रसंगों में सहारा देगा, मदद करेगा। उसी तरह यहाँ कह रहे हैं जो किसी निर्धन जीव को कोई पैसा देवे और ऐसा सोचे कि अरे यार मैंने तुझे इतना पैसा दिया, इतना काम नहीं कर रहा है मेरा, तो हमने क्या किया, काय को दिया, इस तरह से ऐसी अपेक्षा सम्यक दृष्टियों को नहीं होती है। और इस तरह से दान देने वाले विरले ही दिखाई देते हैं, ऐसा कह रहे हैं। पैसा आपीने सामाने ओशियाड़ो बनावी राखे तेवा जीवो तो जगतमा घना छे। ओशियाड़ा यानी क्या? अरे ठहर ठहर, उनको बोलने थे ना। हाँ, लाचार कहो, मजबूर कहो, यानी होशियार यानी अपने अंडर थंब रखने की कोशिश करते हैं, यानी हम जैसा कहे तो वैसा सामने वाला सुनना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं पैसा आपने सामान्य होशियाड़ो बना भी रखे तेवा जीवो तो जगत में घना छे, पर साधर्मी जीव ने तेमज बीजा जीवों ने प्रति उपकार आशा वगर जे धन वगैरह आपे छे एवा जीवो विरला छे। देखो शास्त्र में सो ऐसा कथन आता है कि तीरंच गति का भी जीव उपकार करता है तो बिना आशा के करता है, बिना एक्सपेक्टेशन के करता है। तीरंच मालूम है आपको कोई होगा ऐसा? देखो वो हाँ हाँ बोल रही है। हाँ बोलो बोलो बहन। हाँ, गाय जो है ना बच्चा पैदा होते ही उसको चाट चाट कर सफेद कर स्वच्छ करती है। हाँ, और ये जैसा हमारे मनुष्यों में देखा जाता है कि बच्चा कुछ दिन तो अपने माँ बाप को देखता फिरता है, ख्याल में है ना, लेकिन वो तो बड़ा हो गया तो न मालूम कहाँ माँ और कहाँ बेटा, उसका एक दूसरे का कुछ लेन देन नहीं है। तो उसको कहते हैं कि गाय जैसे अपने बच्चे पर बछड़े पर प्रेम करती है वो तो बिना अपेक्षा के है, विथ नो एक्सपेक्टेशन, वैसा प्रेम, मतलब प्रेम नहीं ऐसा दान सम्यक दृष्टि करेगा कि सामने वाले जीव से कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। स्वभाव में राग घटाड़वानो प्रयत्न वर्ते छे एवा जीवों ने साधर्मी वगैरह माटे लक्ष्मी खर्चवानो भाव आवे छे, जेने निरपेक्ष चैतन्य नु भान अने भावना दोनों बातें, यानी जो चैतन्य का भान यानी चैतन्य का ज्ञान हो गया है, अनुभव हो गया है और उसी के बारंबार उसके बारे में चिंतन चल रहा है, भावना चल रही है, तेने जो दान वगैरह मां प्रति उपकारनी अपेक्षा छूटे चे ने एवा जीवनु जो जीवन सफल चे, चैतन्य नी रुचि वर्ते चे ने राग घटाड़वानो प्रयत्न वर्ते चे तेथी तेनु जीवन सफल कयूं छे। अहो जो तो खरा, ये प्रवचन के बाद बताया है, छठा गुणस्थाने झूलता मुनियों ने पण आवा उपदेश नो विकल्प आवे छे के धर्मी गृहस्थ जिन मंदिर बनावे बंधावे पूजा प्रतिष्ठा करे पात्र दान करे यात्रा करे साधर्मियों ने मदद करे। गृहस्थों की भूमिका तेवो भाव होय छे ने मुनियों ने छठा गुणस्थाने तेवा उपदेशनो विकल्प आवे छे, तेथी आ उपदेश कर्यो छे। मुनि पोते जिन मंदिर पूजा वगैरे कार्यो न करे। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, क्या जिनेन्द्र भगवान सॉरी मुनिराज जिनेन्द्र भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं कि नहीं? किसने यहाँ पूछा था, किसने पूछा था मुझे याद नहीं है, यहाँ दिया है देखो, मुनि पोते जिन मंदिर पर न बंधावे, जिन मंदिर न बंधावे पर इन फाउंडेशन तो करे क्या नहीं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो कह रहे हैं मुनि पोते जिन मंदिर पूजा वगैरह कार्यों न करे पन गृहस्थ धर्मात्माओं ने तेवा शुभ कार्यों नो उपदेश आपवानो विकल्प तो तेमने पन आवे छे अने गृहस्थ कहे के अमने तेवो भाव नथी आवतो अमे तो निश्चय ना ज विचार मा रहिए छे तो ते जीव ने पोतानी भूमिका नो विवेक नथी। यानी जो मंदिर बांधने के अगेंस्ट है उनके लिए कह रहे तेवा जीवों ने पोतानी भूमिका नो विवेक नथी। मुनिराज तो नहीं करेंगे तो मुनि नहीं करते और हम करें ऐसा उल्टा सिखावे। भूमिका ना प्रमाण मा भगवान नी पूजा भक्ति बहुमान साधर्मी प्रत्ये प्रेम वगैरह भावो आव्या विना रहता नथी एम समझवू जोईए। आ अनित्य भावना नु वर्णन छे आत्मा नित्य ज्ञानानंद छे एवं निज घर जेने जोयू छे तेज जीव जगतना पदार्थोनी पर्यायनी अनित्य भावना भावे छे। जेने पर्याय बुद्धि होय एटले के पर्यायनी क्षणिकता ने न जाणता तेने स्थिर राखवा मागतो होय तेने खरी अनित्य भावना होती नथी। एटले के ध्रुव चैतन्यनी दृष्टिपूर्वकनी अनित्य भावना छे एम समझवूं। पुण्य पाप देहादीने अनित्य माने अने वळी तेनाथी लाभ माने तो तेने अनित्य भावना होती नथी। जेनाथी लाभ माने तेने स्थिर राखवा मागे। क्या ये बात सही है क्या गलत है? क्या हम ऐसा नहीं चाहते कि मेरी पत्नी मेरा पति मेरा पैसा मेरे से कभी दूर न हो जाए? क्योंकि उससे हम लाभ मानते हैं ना ख्याल में, तो हम उससे दूर नहीं होना चाहते। क्या कहना चाहते हैं भाई? तुमको किसमें विवेक रखना है कि जो स्थिर चीज है और जो अस्थिर चीज है उसमें हमें बराबर विवेक रख के किसको हम रख सकते हैं किसको हम अपने से छूट जाती है समझो, इसका तो ज्ञान रहना चाहिए ना। तो यहां क्या कह रहे देखो, ध्रुव चैतन्य पूर्वक ने अनित्य भावना चाहिए तो कभी ने पुण्य पाप देहादी ने अनित्य माने अने वड़ी तेनाती लाभ माने तो तेने अनित्य भावना होना होती नथी। अभी कह रहे हैं जेनाती लाभ माने तेने तो स्थिर राखवा मागे। हमारे को नुकसान आ जाए पैसा नहीं आ जाए धंधा बंद हो जाए तो कितना उद्वेग होता है। तो हम ये नक्की मानते हैं क्या कि इनसे हमें लाभ है? अज्ञानी पोताना ध्रुव चिदानंद स्वभावनी दृष्टि छोड़ी ने पर संयोग थी लाभ मानी ने तेने स्थिर राखवा मागे छे ते मोहनु महात्म्य छे एम हवे कहे छे। हवे आगळ मोहनु महात्म्य दर्शावे छे, ये मोह का महात्म्य बता रहे हवे।
जलबुब्बुय सारिच्छम् धन जोवन जीवियं पिपेच्छन्ता मन्नन्ति तो विनिच्चम् ऐ बलियो मोहमाहपो। जलबुदबुद सदृशं धन यौवन जीवितं अपि पश्यन्तः मन्यन्ते तथापि नित्यं अतिबलिष्ठं मोहमाहात्म्यम्। क्या कहते हैं? आ प्राणी धन यौवन ने जीवन, धन ने संपत्ति, यौवन ने उसकी तरुण अवस्था, और जीवन यानी यह कभी भी मर सकता है जल्दी न? क्योंकि जब मरण कब किस समय आ जाए ये तो नहीं कह सकते। तो इनको कैसी उपमा दी है? जलना बुदबुदनी माफक तुरंत विलय पामी जता। उस दिन तो जल तरंग की उपमा दी थी लक्ष्मी के लिए, वो अलग बात है। यहाँ किसकी उपमा दे?
परपोटा
बुदबुदा है ना, क्या परपोटा जो कहो चो वाटर
बबल
बबल वाटर बबल तो जलना बुदबुदनी माफक तुरंत विलय पामी जता जोवा छता पण, यानी ये देखने में आ रहा है, हम आजू बाजू देखते भी है ऐसे प्रसंग। तो आजकल तो इतने मीडिया हो गए तो हमारे तो ख्याल में आते ना, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में देखते हैं, अन्य भी बातें सुनते भी है। तो कहते धन यौवन और जीवन जल के बुदबुदे के समान तुरंत विलय पामी जता जोवा छता पण, तेने नित्य माने छे एज मोटो आश्चर्य छे। दूसरों का मरण देखता है तो भी अपने को जैसे अमर ही हूँ ऐसा मानता है, और ऐसे ही वो जिंदगी वैसी की वैसी चलती है। अरे अरे ये बेचारा मर गया, परंतु यही बात अपने पे भी आने वाले, अरे वो कितना यंग था और इतनी छोटी उम्र में मर गया, परंतु ऐसा कभी उसको सोचता नहीं कि अरे मेरा भी जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। और जो जिसको कहते हैं ना मोस्ट प्रेफरेंशियल जो कार्य है, करने लायक जो इस मनुष्य भव में कार्य है, अपने आत्मा का स्वरूप पहचानना और उसका अनुभव करना, तो ये करने की इसको नहीं सूझती है। तो कहते हैं कि एम जोवा छता पण, तेने नित्य माने छे एज मोटू आश्चर्य छे, एज मोहनु महाबलवान महात्म्य छे। ये सब मोह का महात्म्य है कहते हैं। ये हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी देखा था ना, मोह की महिमा, महात्म्य कहो महिमा कहो, ये मोह की ऐसी महिमा है कि उसके कारण ये अस्थिर होने पर भी, अनित्य होने पर भी, माने कि ये अपने तो चलेगी, दूसरों की अनित्य होगी तो होगी, अपनी नहीं हो सकती। जैसे ये 12 भावना हमारे यहाँ मोना पाठशाला में सिखाती थी, तो राजा राणा छत्रपति वगैरह वगैरह, ये जीव अकेला आता है अकेला जाता है, तो उसका 4 साल का बच्चा कहता है हाँ बाकी सब तो अकेले आते हैं, मैं तो मेरे माँ के पेट में आया हूँ, मैं तो अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ है मेरे साथ। तो ये मुंह का महात्म्य छे। भावार्थ, वस्तु नो स्वरूप अन्यथा जनावामा, जनावा मैंने जिसके कारण वस्तु जैसी है वैसी भासित नहीं होती, ऐसे लौकिक के कुछ यहाँ दृष्टांत दिए, ऐसे कोई कारण बताएं क्या क्या हो सकते हैं। मद्यपान ने मदिरा पीना, अब मदिरा में सब कुछ जो ड्रग्स वगैरह जो कोई नशीली पदार्थ है वो सब कुछ ले लेना उसमें, उसके कारण क्या होता है कि ये तो कुछ वस्तु सामने कुछ अन्य है और ये कुछ मान लेता है कुछ, क्योंकि उसी नशे में वो धुत है। ज्वर आदि रोग के कारण, यानी बहुत बुखार बढ़ गया तो उसके कारण भी ऐसे उसको असर हो जाता है कि सामने की चीज कुछ और है, इसको कुछ और भासित होती है। नेत्र विकार, यानी आंखों में बराबर दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखता है या अन्य का अन्य दिखता है, कभी कभी कलर ब्लाइंडनेस होता है, सामने कलर होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। अने अंधकार के कारण भी सामने वस्तु होते हुए भी नहीं दिखाई देते, अन्य भी अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे हम कहते फॉग होता है तो सामने बड़े बड़े बिल्डिंगे भी नहीं दिखाई देती। हम वहाँ कहा सातारे के पास गए थे, वो घाटघर है, वहाँ इतनी पवन चक्की आए सैकड़ों, और एक एक है तो उसके जो 3 पत्ते होते हैं ना ऐसे पाना है 3-60 मीटर, इतने बड़े बड़े वो है, फिर भी थोड़े से डिस्टेंस में जाते हैं तो इतना फॉग आता है कि एक सामने कुछ स्ट्रक्चर नहीं ऐसा लगता है। तो इस कारण सामने वस्तु होते हुए भी नहीं दिखाई देती, ये तो दृष्टांत हुआ। इत्यादि अनेक कारणों छे, परंतु आ मोह तो ए सर्वथी पन बलवान छे। मोह ऐसा कारण है कि इनको सरपास कर देता है। क्या करता है वो, के जे प्रत्यक्ष वस्तु ने विनाशिक देखे छे छता, वहां तो चीजें दिखाई देती है अन्यथा दिखाई देती है जो कुछ भासित होती है, परंतु यहाँ तो ये देख रहा है स्वयं कि वस्तुएं विनाशिक है क्षणभंगुर है, ऐसा देखते हुए भी तेने नित्य रूपज मनावे छे, ये मानता है कि वो नित्य रहती है। तथा मिथ्यात्व काम क्रोध शोक, यानी मिथ्यात्व और राग द्वेष सभी कषाय, मिथ्यात्व और कषाय सभी कषाय ले लेना इसमें, मिथ्यात्व काम क्रोध शोक इत्यादि बधा मोहनाज भेद छे। हम मोहनीय के भेद करते हैं ना, मिथ्यात्व और कषाय नो कषाय ये सब मोह के ही भेद है। ए बधाए वस्तु स्वरूप मां अन्यथा बुद्धि करावे छे, अन्यथा बुद्धि ने अन्यथा मान्यता, वस्तु जैसी है वैसी नहीं मानते हुए उसको अन्य मानना, ये मिथ्यात्व के कारण हो जाता है। हवे आगळ आ कथन ने संकोचे छे, वो तो बाद में करेंगे हम, यहाँ अर्थ पढ़ेंगे।
देखो हमने ये देखा था, तन जीवन यौवन अस्थिर है क्षण भंगुर पल में मुरझाए। मालूम है कौन से पूजन में है? उसकी जयमाला में आता है, सम्राट महाबल सेनानी, वो आगे की गौत। ये जो अनित्य भावना में ये बात आती है,
ये जल बुद्ध की बात है मराठी में, जिसको मालूम हो के मराठी के 12 भावना मालूम है, जीवित सोनी जल बुद बुद सम विषय राजधन राशि सिरन च जीवा ऐसे मानी कारण संसारासी। हम बच्चे थे ना 6-7 साल के, तब से याद किया था। हाँ, पूरी 12 भावना है ऐसे मराठी की, बहुत अच्छी है।
ये सब बातें जो है, ये तन है, धन है, यौवन है, और ये लक्ष्मी है, यानी धन की बात आ गई ना, यौवन है, ये सारे कैसे हैं? कुछ दिन में खत्म हो जाने वाले हैं। और यहाँ कह रहे हैं, यानी हमको लगता है कि ये कहाँ से बात इनके ज्ञान में आई होगी, तो ये एक के बाद जो आते हैं, सबको जब भाव बात भाती है तो वो अपने अपने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये सब क्या कहते हैं, क्षण भंगुर है, इतना जानते हुए भी यह जी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है, ये मोह का महात्म्य है ऐसा कह रहे हैं। और जिसके अधिक उसमें एकत्व बुद्धि है उसका मोह तो अधिक है, ये बात बताना चाहते हैं। यहाँ मूल क्या बात बताई, भावार्थ में तो ऐसा समझाया है कि जिस तरह मद्यपान करने से कोई मद्यपी अपने माँ को माँ कहे तब भी उसके ऊपर भरोसा मत करो, ऐसा कहा है, क्योंकि वह क्षण में अपने पत्नी को भी माँ कहे और अपने माँ को भी पत्नी कहे, या अपने पत्नी को माँ कहे, ऐसा कुछ भी गड़बड़ी कर दे। वैसे ही किसी को बहुत बुखार चढ़ जाए तो उसको अच्छा अच्छा मीठा दूध देने के बाद भी, या अन्य कोई पदार्थ खिलाने पर भी उसको उसका स्वाद नहीं आता है, कुछ अन्यता भासित होता है, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वह उसे उस रूप से प्रतिभासित यानी ज्ञान में नहीं आता है, और नेत्र विकार हो जाए, पीलिया हो जाए, जैसा हम देखते हैं ना तो उसको सारा सफेद कपड़ा भी पीला पीला दिखता है, उस तरह ये मोह है। वह मोह के कारण जैसा मेरा स्वभाव है वैसा वो नहीं जानता है, इसलिए सारे उदाहरण दिए हैं ख्याल में। अब देखते क्या कह रहे अर्थ में, जगत माँ देखाई छे के लक्ष्मी क्षण माँ चाली जाय छे, देहनो क्षण माँ विनाश थई जाय छे, ने युवान अवस्था पलटी ने वृद्धावस्था थई जाय छे। परसों यहाँ एक उदाहरण दिया था ना स्वामी जी ने कि एक बूढ़ी ऐसी मतलब ऐसे झुक कर चल रही थी तो किसी ने उसकी मस्करी की, माँ जी सू गोतो चो, और हंसने लगे, तो उसने कहा कि मैं मेरी जवानी कहाँ खो गई देख रही हूँ, यानी तू घबरा मत तेरे भी यही हालत होने वाली है, ये जवानी कायम नहीं टिकने वाली, ये बात बताते हैं। 20-25 वर्ष ना जुवान जोध मानसो क्षणमा जीवन पूरु करीने चाल्या जाय छे, आवी अनित्यता नजरे जोवा छता मोह ने लीधे जीवते शरीर धन जीवन वगैरे नित्य मानी ने तेमा मोहित थई रह्यो छे, ए मोटू आश्चर्य छे, मृत्यु वगैरे देखीने क्षणिक वैराग्य आवे तेनी आ वात नथी। ये तो जिसको हम कहते ना स्मशान वैराग्य, अनेकों को आते हैं फॉर द टाइम बीइंग। आ तो ध्रुव चैतन्यनी भावना सहित अनित्य पदार्थो प्रत्येना वैराग्यनी वात छे, पानीना परपोटानी माफक आ पदार्थोनो संयोग क्षणिक छे, धन यौवन के जीवन तो पानीना बुद्बुद जेवा अस्थिर छे, ए वात नजरे देखाय छे के ते बधु क्षणमा विलय पामी जाय छे, छता जीव तेने स्थिर राखवानी भावना छोड़तो नथी, ने ध्रुव द्रव्यना आश्रयनी भावना કરતો નથી, તે મોહનું મહાબળવાન મહાત્મ્ય છે. જો કર્મનું જોર નથી, પણ અજ્ઞાની જીવ પોતે મોહભાવ કરે છે તે તેનું જ બળ છે. ઓર ઉપર સે કહેગા ક્યા કરે સાહેબ, કર્મ એસે ખોટે આયે હૈ ઇસલિયે હમકો યે કરના પડતા હૈ, તો અપના દોષ દૂસરે કે માથે ડાલ દેતા હૈ. જેમ સ્વપ્ન સ્થિર રહેતું નથી, તેમ શરીર ધન વગેરે પણ જીવની પાસે સ્થિર રહેતા નથી. એ તો ક્ષણિક છે. જુવાન શરીર હોય ને પરણવા જાય ત્યાં માંડવામાં જ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય. આવા પ્રસંગો દેખીને પણ મૂળ જીવો પોતે અંતરમાં ધ્રુવ દ્રવ્ય સ્વભાવ તરફ વળતા નથી, એ આશ્ચર્ય છે. ધર્માત્માને તો અંદર ધ્રુવ ચૈતન્યના ભાનપૂર્વક સંયોગમાં અનિત્યતાની ભાવના નિત્ય રહે છે. પર્યાયને સ્થિર રાખી શકે એવી કોઈની તાકાત નથી. માટે તે પર્યાયની ભાવના છોડીને તારી ન્યાયક શક્તિ ધ્રુવ પડી છે તેની ભાવના કર. અંદર કેવળ જ્ઞાનના ભંડાર ભર્યા છે તેને ખોલ. જો સંતો મુનિઓને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનને એવો પણ શુભ વિકલ્પ આવે છે કે ગૃહસ્થ શ્રાવકો જિન મંદિર કરાવે, જિનબિંબ પ્રતિષ્ઠા કરાવે, ધર્મના મહોત્સવ કરે, એમાં આશય તો એવો છે કે તે તે ભૂમિકામાં દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિ પ્રભાવના વગેરેનો શુભભાવ આવ્યા વિના રહેતો નથી, તેથી તેનું વર્ણન કર્યું છે. એ બહુ આસાન હૈ, ઇસમે કોઈ એક્સપ્લેનેશન કી આવશ્યકતા તો મુજે નહીં લગ રહી હૈ. અરે જગતના જીવો લક્ષ્મીને નિત્ય માની રહ્યા છે તેને બદલે તેને અધ્રુવ જાણે તો તેનો રાગ ઘટ્યા વિના રહે નહીં. જેને આત્માની પ્રીતિ થાય તેને દેવગુરુ ધર્મ પ્રત્યે ભક્તિ બહુમાન આવ્યા વિના રહે નહીં, અને તેની માટે લક્ષ્મી વગેરે વાપરવાનો ઉલ્લાસ આવ્યા વિના રહે નહીં. તેથી મુનિવરોએ પણ તેનો ઉપદેશ કર્યો છે. સ્વભાવના ભાનપૂર્વક ભૂમિકામાં તેમજ ત્યાર પહેલાં પણ આવો ભાવ આવ્યા વિના રહેતો નથી. શરીર આદિની અનિત્યતા જાણે અને તેના ઉપરથી મમતા ન ઘટે એમ બને નહીં. આય કહે છે કે અરે જીવ, એ અનિત્ય છે કે જીવન ધન અને યૌવન તો ક્ષણમાં વિલય પામી જશે, એ કોઈ ધ્રુવ રહેવાના નથી. ધ્રુવ તો આત્માનો આનંદ સ્વભાવ છે. જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ છે. આવા વસ્તુ સ્વરૂપના ભાન વિના મોહથી જીવો દેહાદિના સંયોગમાં સ્થિરતાની બુદ્ધિ કરે છે. ભાવાર્થ, વસ્તુનું સ્વરૂપ અન્યથા જાણવામાં મદ્યપાન, જ્વરાદિ રોગ, નેત્ર વિકાર અને અંધકાર ઇત્યાદિ અનેક કારણો છે, પરંતુ આ મોહ તો એ સર્વથી પણ બલવાન છે કે જે પ્રત્યક્ષ વસ્તુને વિનાશિક દેખે છે છતાં તેને નિત્યરૂપ જ મનાવે છે, તથા મિથ્યાત્વ, કામ, ક્રોધ, શોક ઇત્યાદિક બધા મોહના જ ભેદ છે. એ બધા વસ્તુ સ્વરૂપમાં અન્યથા બુદ્ધિ કરાવે છે. એ આ બીજો વસ્તુ સ્વરૂપ મેં અન્યતા બુદ્ધિ કરાને વાલે કિસકો બતાયા હૈ? બહુ અચ્છા, મિથ્યાત્વ, કામ, ક્રોધ ઓર શોક, ઓર ઉસકે લિયે ઉદાહરણ દિયા થા મદ્યપાન વગેરે વગેરે વગેરે, તો ઉસકે ઇસકે સાથ કમ્પેરિઝન કી હૈ. વસ્તુ સ્વરૂપને વિપરીત દેખવામાં નિમિત્ત તરીકે મદ્યપાન, નેત્ર વિકાર વગેરે ઘણા છે, પણ મૂળ કારણ તો જીવનો મોહભાવ છે. ઊંધી માન્યતાને લીધે જીવ અનિત્ય પદાર્થોને શરણભૂત માને છે, કુદેવ કુગુરુને આદરે છે, નિમિત્તથી ઉપાદાનમાં કાર્ય થાય એમ માને છે. આ બધામાં મોહનું મહાત્મ્ય છે. મોહને લીધે જીવ અનુત્ત વસ્તુને પણ નિત્યરૂપ માને છે. यानी ये जो जिसकी ऐसी मान्यता है वह अपना स्वयं का अगर क्या बोलते हैं स्वयं को बार बार सोचेंगे कि क्या मेरा ऐसी ऐसा जो सोच है क्या वह सही है, तो उसको पता लगेगा कि मैं अनित्य वस्तु को नित्य टिकाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ और रख सकता हूँ, तो समझना कि हम स्वयं मिथ्यात्वी है। ये अपने को एक एक चाबी दे रहे हैं ना, तो हमें ये चाबी दूसरे पे नहीं लगानी है, हमें स्वयं पर लगानी है। ख्याल में है ना? क्या कहा? मोह ने लीधे जीव अनित्य वस्तु ने पन नित्य रूप माने छे, अने जेने मोह नथी ते अनित्य वस्तु ने अनित्य जाने छे। जो कोई बीजो तेने भूल करावतो नथी, पन जीव पोते मोह थी एटले मिथ्यात्व थी वस्तु स्वरूप ने विपरीत माने छे, तेज अने एवी मान्यता ज संसार नू कारण छे। अज्ञानी चैतन्यना सुखने चूकीने काम वासनाने लीधे विश्वमां पण सुख माने छे, विश्व दुखदायक होवा छतां अज्ञानीने काम वासनाने लीधे तेमां सुख लागे छे। वरी क्रोधने लीधे पण जीव वस्तु स्वरूपने ऊंधू देखे छे। हूँ क्रोध अने कड़काई राखूं तो बधाय मारूं माने अने व्यवस्था सरखी चाले, एम जे माने छे ते जीव पण क्रोधी नथी मोही छे लखे छे। क्रोध तो प्रत्यक्ष दुख रूप छे, छता जीव तेने हित रूप माने छे। उल्टी माने तो हो गई ना। धर्मी ने अल्प क्रोध थाय त्यां तेज वक्ते तेनी दृष्टि मां क्रोध रहित शांत स्वरूप नू भान छे, अने क्रोध ने ते दुख रूप जाने छे। खूब रोई लेवा दियो एटले के एनु हय्यू खाली थाय, एम अज्ञानी माने छे। ऐसा देखते हैं डायरेक्ट नहीं तो सिनेमा में नाटकों में कि किसी का कोई मर जाए और वो बस बिल्कुल हुप बोले ही नहीं, रोवे भी नहीं, तो उसको बार बार ऐसा प्रयत्न करेंगे कि वो रोवे। और क्या कहते हैं, खूब रोई लेवा दियो एटले एनु हय्यू खाली थाय, एम अज्ञानी माने छे। पण अरे भाई, रोवानो भाव ते शोक छे, ते तो आर्त ध्यान छे, पाप छे। शू तेना थी एटले पाप थी शांति थाय? स्वामी जी कहां से कहो? अरे तारा नित्य चिदानंद स्वभाव ने याद करीने शोक ने छोड़ तो शांति थाय। अनंता संतो चिदानंद स्वरूप नु ध्यान करीने केवल ज्ञान पाम्या छे। माटे ते चिदानंद स्वरूप नी भावना कर। जेने चिदानंद स्वरूप नी भावना नथी अने अनित्य संयोगमांथी सुख लेवा मागे छे तथा क्रोध काम शोक वगैरह ने सुखरूप माने छे, ते जीव मोह थी मूढ थयेला छे। समझ में आती बात? वासुदेव बलदेव बन्ने भाइयों महाजोद्धा छे। ये वासुदेव और बलदेव कितने होते हैं दिव्या बेन, आप जानते हैं? आप जानती हैं कौन दोनों में से कौन नव होते हैं? वासुदेव नव होते हैं और बलदेव, कोई वासुदेव का नाम मालूम है आपको? कृष्ण और दूसरा
वासुदेव ने नारायण।
प्रति नारायण नहीं, नारायण और बलदेव जिसको कहेंगे बलदेव। हाँ, और बलदेव कौन था उसके साथ? राम राम चुबड़ो ना।
रावण तो प्रति
कोई बात नहीं। देखो अभी आगे पढ़ेंगे, सुनो आगे पढ़ेंगे। मैंने इसलिए पहले आपको टटोला के भाई आप लोग कितना जानते हैं, तो आगे की बात समझने जैसी है। देखो वासुदेव बलदेव बन्ने भाइयों महायोद्धा छे, यानी वो बहुत ही शूरवीर होते हैं योद्धा। तेमा पहला वासुदेव मरे एवो अनादि नियम छे, अने पछी बलदेव मोहने वश थईने, मोहने वश भाईना मृतक शरीर ने 6 महीना सुधी खंभे उपाड़ीने फरे छे। ये तो हर वासुदेव और बलदेव में ये बात होती ही है। जैसे श्री राम, उसके पहले क्या हो गया, ये हमारे लक्ष्मण, उनका देहांत हुआ तो उसके शरीर को लिए घूमे, और वहां भी ऐसी बात हुई थी। श्री कृष्ण और बलदेव, बलराम जिसको
बलराम, हाँ। देखो ऐसा नियम है, ये दोनों एक ही पिता के मगर उनकी माताएं अलग अलग भाई होते हैं,
सावतर भाऊ रहते हैं,
जिसको कहते हैं ना सौतेले भाई होते हैं, और इतना प्रेम होता है उनका गजब का। ये यहाँ लिखा है ना मोह, वासुदेव ने नारायण, प्रतिनारायण अलग,
उसमें जरासंध, हाँ। और रावण,
उसका उसका कनेक्शन ऐसा है कि नारायण प्रतिनारायण को मारता है, हाँ।
यानी देखो अपने जैन हिस्ट्री की अपेक्षा से रावण को लक्ष्मण मारता है, और अन्य जामन लोगों में ऐसा मानते हैं कि राम ने उसको मारा, रावण प्रतिनारायण, यहाँ जरासंध प्रतिनारायण
कृष्ण में, और दोनों ही नरक जाते हैं, प्रतिनारायण भी जाता है और नारायण भी जाता है, दोनों जाते हैं।
आपको क्या होना है नक्की करो।
और जो बलदेव है वो या तो स्वर्ग या मोक्ष में जाते हैं।
और ये 9 के 9 में ऐसा होता है, वो दोनों भाई लेकिन कैसे सौतेले भाई होते हैं, फिर भी बहुत बहुत प्रेम होता है उनको। हाँ।
आपको ऐसे कोई बलभद्र मालूम है कि जो मोक्ष गए?
अपने लक्ष्मी बहन बताए कि फटाफट,
हाँ कितने हैं उतना बोलो, 8 गए हैं ना, 1 नहीं गए, 1 स्वर्ग गए, हाँ। देवलाली में जो 8 मूर्ति है,
हाँ बोलो कौन है 8?
सुधर्म सुप्रभ वगैरह, हाँ
सुधर्म सुप्रभ नंदी नंदी मित्र रामचंद्र इधर है ये साइड में, और विजय और एक है कोई विजय, चला तो वो तो इसके नाम है
नहीं, उसमें ये लेफ्ट साइड में है ना,
सुधर्म
नंदी नंदी मित्र आएगी अभी शास्त्र में,
याद नहीं आ रहे, 8 है इतना निश्चित है। ये नंदी नंदी मित्र इस तरह पे, सुदर्शन सुदर्शन नंदी नंदी मित्र रामचंद्र बलभद्र महान, ये राइट साइड के, और लेफ्ट साइड के सुधर्म, पहले 2 याद आ गए दूसरे भूल गया, एक विजय है उसमें,
विजय है उसमें शायद, हाँ।
ऐसे 8 बलभद्र जो है वो मोक्ष चले गए हैं, और उनकी दर्शन करते हैं हम अभी अगले टाइम जब आप देवलाली जाएंगे, नाम याद करके आना, हाँ। जहाँ शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है उनके बाजू में दोनों, आपको याद नाम याद है, जंत्री बंत्री नहीं देखी क्या? देखो देखो ये क्या है, ये तो प्रथमान युग की बातें हैं, फिर भी हमें उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है ना, क्यों ज्ञान होना आवश्यक है, ये मोह का महात्म्य चल रहा है कि जो जीव उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे रामचंद्र जी जैसे जो बलभद्र थे बलदेव थे, वे भी अपने भाई का सम्यक दृष्टि शव 6-6 महीने अपने कब्बे सुन के वैसे खंदे पे लिए घूमते थे, तो हम पैसे के लिए घूमे तो आपको क्या तकलीफ है, अरे पर वो सम्यक दृष्टि थे, ये समझ, जिस समय वो घूम रहे थे तब अंदर से तो बिल्कुल ऐसी गारंटी थी कि ये जुदा है मैं जुदा हूँ, ये शरीर जुदा है मैं जुदा हूँ, फिर भी उससे भी मोह हावी था, यानी उनका मिथ्यात्व नहीं टूटा था, और हमें लगता है ऐसा कैसा हो सकता है, अरे भाई श्रद्धा गुण जुदा है और चारित्र गुण जुदा है, श्रद्धा गुण तो वहीं का वहीं नक्की हो गया पक्का, नहीं फिर से वासुदेव बलदेव हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने बताया कि क्या वही मिथ्या दृष्टि थी क्या सम्यक दृष्टि थे? हाँ जब भी सम्यक दृष्टि थे, मुझे उसका पक्का नॉलेज नहीं है। मेरे हिसाब से तो क्षायिक सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। हाँ रामचंद्र तद्भव मोक्षगामी थे ना, वासुदेव बलदेव बन्ने भाइयों महाजोद्धा छे, तेमा पेला वासुदेव मरे, यानी यहाँ कहेंगे वासुदेव का अर्थ नारायण लेना तो जल्दी समझ में आवे। एवो अनादि नियम छे, अने पछी बलदेव मोहने वश भाईना मृतक शरीर ने 6 महीना सुधी सुखी हुआ सुधी चाहिए। हाँ देखा हम गलत को सीधा पढ़ रहे हैं। खंबे उपाड़ी ने फरे छे जुओ मोह तेने तो ते वक्ते अंतरमा आत्मानु भान छे। डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। लक्ष्मण ने रामचंद्र जी ऊपर केवो प्रेम छे तेनी परीक्षा करवा देवो ए लक्ष्मण ने कहूं के रामचंद्र जी स्वर्गवास पाम्या। ए वात सांभळता हा राम एम बोलता लक्ष्मण नो देह छूटी गयो। जुओ क्षणिकता देहादि काय पण स्थिर रहनार नथी, एम जानी ने हे जीव तू तारा नित्य चिदानंदनी भावना कर अने महामोहने छोड़। देखो प्रथमानुयोग पढ़ते हुए भी ऐसे वितरागता का या वैराग्य का प्रसंग देखने में आता है। उसको तो इतना ही बताया कि भाई अरे वो कितना प्रेम है देखना चाहते थे, वो निमित्त हुआ, उसकी आयु पूरी हुई और उसको ऐसा हार्ट अटैक आ गया अपनी भाषा में। हवे आ इत्यादि कारणी छेल्ली गाथा छे, केटलू सरस।
देखो अभी इसका संकोच करते हैं, अभी
समापन
करते हैं, उपसंहार करते हैं, अभी ये अनित्य भावना यहाँ तक ही है, बाद में वो अशरण चालू हो जाएगी। ये लास्ट है उसकी गाथा।
कौन से
हवे अनित्य अधिकार नी छेल्ली गाथा कही वो वाला हाँ, देखो क्या है मूल जो ग्रंथ है ना उसमें तो भावार्थ ही है और उसके भावार्थ में नहीं लिखा है 21 के भावार्थ में नहीं लिखा था, भावार्थ के बाद गाथा के ऊपर लिखा था। अब इसको संकोचते हैं तो वहीं पर होना चाहिए। हाँ वहाँ 21 के एंड में नहीं है। हाँ मैं पहले पढ़ती हूँ प्राकृत में। चयूण महामोहम विषय मुनिऊण भंगुरे सौवे निविषयम कुणहमणम जेन सुहम उत्तमम लहै। त्यक्त्वा महामोहम विषयान् श्रुत्वा भंगुरान् सर्वान् निर्विषयम् कुरुष्व मनः येन सुखम उत्तमम लभते। अभी जीवों को उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीव ऐसा करना, ऐसा कहेंगे। क्या कहते हे भव्य जीव, ऊपर लिखा है ना सर्वान विषयान भंगुरान श्रुत्वा, यानी जो सभी विषय है वो विनाशिक है ऐसा सुनकर क्या करना है। महामोहम त्यक्त्वा, महामोह को छोड़कर उसका त्याग करके क्या करना है। मनः निर्विषयम् कुरुष्व, तेरा मन यानी तेरा अंतकरण जो है वो निर्विषय कर यानी विषयों से रहित कर, विषयों से रहित कर यानी विषयों की जो अभिलाषा है उससे रहित कर। तेतीस क्या हो जाएगा, ये न सुखम उत्तमम लभते,
उत्तम
जिसके कारण तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यह हम गुजराती में पढ़ेंगे। हे भव्य जीव तू समस्त विषयों ने विनाशिक सामरी ने महामोह ने छोड़ी, तारा अंतकरण ने विषयों थी रहित कर, जेथी तू उत्तम सुख ने प्राप्त करीश प्राप्त थाय। भावार्थ, ऊपर कया प्रमाणे संसार देह भोग लक्ष्मी इत्यादि सर्व अस्थिर दर्शाव्या, इस जीव को जिसमें जिसमें बहुत रुचि है और जहां वो नित्य मानकर उसी के पीछे लगा है, उसको टिकाने की कोशिश करता है, तो कहते ये सब अस्थिर बताए हैं यहाँ पर। तेने सामरी जे पोताना मन ने विषयों थी छोड़ावी, आ अस्थिर भावना भावशे, अस्थिर भावना करना है ने ये पदार्थ अस्थिर है ऐसा निर्णय करके अपने स्थिर स्वभाव में एकाग्र होना, उसको कहेंगे अस्थिर भावना भावना। ये तो मुंह से बोलना बार बार ये अनित्य अनित्य कहना, ये अस्थिर भावना नहीं होती, क्योंकि स्थिरता के भान बिना अस्थिरता कौन कहेगा। तो जिसको अपने स्थिरता की दृष्टि हुई है चैतन्य स्वभाव की, उसके लिए कहते हैं कि अस्थिर भावना भाव से ते भव्य जीव सिद्ध पदना सुख ने प्राप्त थसे। उसको अस्थिर कहने से यहाँ सिद्ध पद प्राप्त होगा नहीं, तो स्थिर ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव में वो एकाग्र हो जाएगा तब उसको सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थ पढ़ेंगे आप।
अरे जीव, अमारी पासे थी ते चैतन्य शक्ति नु श्रवण करियूं अने विषयोनी क्षणभंगुरता ने जानी, तो हवे तो तारा ध्रुव स्वभाव नी भावना करीने महामोह ने छोड़, विषयो विनाशिक छे एम जानी ने पर विषयोनी रुचि छोड़ीने स्व विषय ने दृष्टि में ले, चिदानंद द्रव्य ने रुचि करीने अने विषयोनी प्रीति छोड़ीने तारा अंतकरण ने विशुद्ध कर, तारा अंतर ने विषयों थी खाली कर, तो तेमा चैतन्य नी दृष्टि समाशे। विषयोनी अनादिति जेवी प्रीति छे तेवी ज प्रीति रहे तो तेने चैतन्य स्वभाव दृष्टि में नहीं आवे। आई तो कहे छे के अहो, जे जीव आवी अनित्य भावना सांभळी ने नित्य ध्रुव एवा स्वद्रव्यनी भावना करशे अने क्षणिक विषयोनी भावना छोड़शे ते भव्य जीव अल्पकाळमां सिद्ध दशाना सुखने पामशे। ऊपर कया प्रमाणे संसार देह भोग लक्ष्मी इत्यादि सर्व अस्थिर दर्शाव्या, तेने सांभळी जे पोताना मनने विषयोथी छोड़ावी आ अस्थिर भावना भावशे ते भव्य जीव सिद्ध पदना सुखने प्राप्त थशे। यहाँ तो दोहा दिया है,
यहाँ दोहा दिया है क्योंकि भावार्थ जो लिखने वाले हैं पंडित जी ने लिखा है। एक्चुअली उनके जयचंद जी पंडित की अन्य भी 12 भावनाएं हैं, यहाँ तो ये कुछ अलग ही लिखी है।
ये कुछ अलग दिया है, पढ़ो
द्रव्य दृष्टि अलग इसका
नहीं, दोहरा दोहा है।
पर्याय थिर निहारी
द्रव्य दृष्टि ते
वस्तु थिर पर्याय थिर निहारी उपजत विनशत देखि के हर्ष विषाद निवारी।
ठीक है चलो। अरे जीव, अनंत काल विषयों में हर्ष शोक करिया पण तेमा आत्मानु हित थयुं नथी, माटे वैराग्य पामीने हर्ष शोक ने छोड़ द्रव्य दृष्टि थी वस्तु स्थिर छे एम जानीने तेनी भावना कर, अने पर्याय दृष्टि थी वस्तु अस्थिर छे एम जानीने तेमा हर्ष शोक ने छोड़। अरे जीव, हवे वैराग्य पाम। तीर्थंकर भगवंतो दीक्षा लेता पहला ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવી ભાવનાઓ ભાવે છે. જો શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન રાજસભામાં વિરાજતા હતા, અપ્સરાઓ ભક્તિથી નૃત્ય કરતી હતી, ત્યાં નૃત્ય કરતાં કરતાં નીલાંજના જોઈએ છે, નીલંજસા લખ્યું છે, ઠીક છે, જે હશે તે રહેવા દો. નામની દેવીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું, ભગવાનના ખ્યાલમાં તે વાત આવી ગઈ અને તરત જ વૈરાગ્ય પામીને અનિત્ય ભાવના વગેરે 12 ભાવના ચિંતવવા લાગ્યા. અહો, આખો સંસાર અનિત્ય છે, વીજળીના ઝપકારની માફક ક્ષણમાં વિલય પામી જાય છે. અંદર ધ્રુવ ચૈતન્યનું ભાન હતું અને આવી ભાવના ભાવીને વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષિત થયા. એ રીતે આ વૈરાગ્ય ભાવનાઓ જીવે ક્ષણે ક્ષણે ભાવવા જોઈએ, ભાવવા જેવી છે. ચાલો અભી ક્યાં કહે રહે, એ પ્રમાણે પહેલા અધ્રુવ ભાવના પૂરી થઈ. અભી 23 નંબર કી ગાથા છે, અશરણ ભાવના. અશરણ ભાવના યાની જિસકા હમ સહારા નહીં લેતે હૈ, લે સકતે હૈ, એસી ભાવના.
દેખો અભી 2 હી મિનિટ હૈ, હમ કુછ યે અનિત્ય ભાવના કી જો અન્ય અન્ય લિખે હૈ, જયચંદ જી ને લિખી હૈ, દીપચંદ જી ને લિખી હૈ, ભુજચંદ જી ને લિખી હૈ, ભાગચંદ જી ને લિખી હૈ, ચઢાલા મેં લિખી હૈ, હુકમચંદ જી ભારીલ ને લિખી હૈ, અલગ અલગ ભાવનાઓ કો આપકો અભ્યાસ કરના ચાહીએ ઘર મેં. યે જો યહાં જો હમને દેખી ના જયચંદ જી કૃત, ઉનકી એક મેં પઢતી હું યહાં,
દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ તે
દ્રવ્ય રૂપ કરી થર્વ થિર પર જય થિર હે કોન, દ્રવ્ય દૃષ્ટિયા પાલકો પર જય નય કરી ગોન. ઓર દીપચંદજી ને ભી એસી લિખી હૈ, દ્રવ્ય દૃષ્ટિ સે વસ્તુ થિર પર્યય અથિર નિહાર, તાસે યોગ વિયોગ મે હર્ષ વિષાદ નિવાર. બુધજનજી કહેતે હૈ, આયુ ઘટત તેરી દિન રાત, હોય નિચિત રહ્યો ક્યો ભ્રાત, જીવન ધન તન કિંકર નારી, સબ હૈ જલ બુધ બુધ ઉનહારી. ભૂધરદાસજી કહેતે હૈ, રાજા રાણા છત્રપતિ હાથી ન કે અસવાર, મરના સબકો એક દિન અપની અપની બાર. દલબલ દેવી દેવતા માત પિતા પરિવાર, વો આગે વાલા અશરણ વાલા હૈ. યહાં આગે ભી લિખતે હૈ અનિત્ય ભાવના મેં, સૂરજ ચાંદ છિપે નિકલે, ઋતુ ફિર ફિર કર આવે, પ્યારી આયુ એસી બીતે પતા નહીં પાવે, પર્વત પતિત નદી સરિતા જલ બહ કર નહીં હટતા, શ્વાસ ચલતયો ઘટે કાઠ જો આરે સો કટતા, ઓસ બુંદ જો ગલે ધૂપ મે વા અંજલિ પાની, છિન છિન યૌવન છીન હોત હૈ ક્યા સમજે પ્રાણી, ઇન્દ્ર જાલ આકાશ નગર સમ જગ સંપત્તિ સારી, અથિર રૂપ સંસાર વિચારો સબ નર અરુનારી. ઓર ભી બહુ સારી અપના અભી સમય ખલાસ હોતા હૈ, વૈસે રવિન્દ્રજી કી ભી હૈ, ચઢાલા કી ભી હૈ, હુકમચંદજી કી ભી હૈ,
અપને
હા
એનકી ભી હૈ ના, યુગલજી કી,
હા યુગલજી કી ભી અપને પુસ્તક મેં યે. તો ઇસ તરહ સે યહાં જો ભાવના હમ પઢતે હૈ ઘર મેં જાકર અન્ય અન્ય પુસ્તકો મેં સે એસી ભાવનાઓ નિકાલ કર ઉસકો પઢના, તો યે પક્કા હો જાયેગા અપના. બાકી આગે કી ભાવના કલ
દેખીએ. જ્ઞાન તૈ સૂજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકણમ સદા દેત હો. અમૂલ્ય.